ఓం శాంతి. భవ్యక్తవాణి 9th April 1983. కుమారస్య ములాఖాత్. రూహానీ యూత్ గ్రూప్ శాంతికారి కళ్యాణకారి గ్రూప్ హై. సదా విశ్వ మే శాంతి స్థాపనా కే కార్య మే నిమిత్త హై. వహ అశాంతి ఫైలానే వాలే ఔర్ ఆప్ శాంతి ఫైలానే వాలే. ऐसे अपने को समझते हो. युद्ध ग्रुप में राजनीतिक लोगों की भी उम्मीदें हैं और बाप दादा की भी उम्मीदें हैं. उम्मीदें पूरी करने वाले होना. बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होंगे तो सफलता के सितारे बन. गवर्नमेंट तक यह आवाज बुलंद करना है कि हम विजयी रत्न हैं. अभी देखेंगे कि कौन से ग्रुप और कहां यह पहले झंडा लहराते हैं. कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना. सदा यह याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. क्यों है जिम्मेवारी मंजू बहन? क्योंकि हम विश्व के आधार मूर्त है. एक कमजोर तो एक के पीछे एक का संबंध है. हम जिम्मेवार है. यह स्मृति सदा रहे. जो कर्म आप करेंगे आपको देख सब करेंगे. इसलिए साधारण कर्म नहीं. सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले सदा अचल रहने वाले. 9th April 1983. अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात. रूहानी युद्ध ग्रुप कैसा है? शांतिकारी. क्रांतिकारी नहीं, क्रांतिकारी भी और कल्याणकारी. तो रूहानी युद्ध ग्रुप शांति स्थापन करने वाला, शांति फैलाने वाला, शांति दूत, शांतिकारी और कल्याणकारी. सदा विश्व में शांति स्थापना के कार्य के निमित्त. वह जो युद्ध है वो क्या करते हैं? अशांति फैलाने वाले हैं और आप शांति फैलाने वाले. ऐसे अपने को समझते हो. युद्ध ग्रुप में राजनीतिक लोगों की भी उम्मीदें हैं और बाप दादा की भी उम्मीदें हैं. उम्मीदें पूरी करने वाले हो. अभी वर्तमान समय हो उम्मीदों के सितारे और सफलता के दोनों साथ साथ. अंत में क्या होंगे? सफलता के सितारे. ऐसा अनुभव करेंगे जैसे ये जो उम्मीदें हैं वो ऐसी पूरी हो गई है जैसे कि हुई पड़ी है. बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होंगे तो सफलता के सितारे बन. गवर्नमेंट तक यह आवाज बुलंद करना है कि हम विजयी रत्न हैं. अभी देखेंगे कि कौन से ग्रुप और कहां यह पहले झंडा लहराते हैं. कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना. सदा यह याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. एक कमजोर तो एक के पीछे एक का संबंध है. हम जिम्मेवार है. यह स्मृति सदा रहे. जो कर्म आप करेंगे आपको देख सब करेंगे. इसके लिए साधारण कर्म नहीं. सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले सदा अचल रहने वाले. तो सदा यह याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी. कौन सी जिम्मेवारी मंजू बहन? कौन सी जिम्मेवारी आज वरदान? जिस तरफ से और जहां हम कदम रखेंगे विश्व की आत्माएं हमें फॉलो करेगी. ये है जिम्मेवारी. क्योंकि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं इस संसार की. इसके लिए हम जिम्मेदार आत्माएं, जिम्मेवार आत्माएं हैं. जिस रूप में जिस और हम कदम रखेंगे विश्व की सारी आत्माएं हमारा अनुगमन करेगी. इसके लिए हम जिम्मेवार है, और ऐसी जिम्मेवारी उठाने वालों के लिए क्या हो जाता है, उन्हें सभी आत्माओं की आशीर्वाद मिल जाती है। इसके लिए अपनी स्थिति बनाने का, अपनी स्थिति आगे बढ़ जाती है, थकावट नहीं होती है, हल्कापन महसूस होता है, जिम्मेवारी हल्की हो जाती है, जिम्मेवारी हल्कापन हल्की हो जाती है, क्योंकि विश्व की आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। शुभ आशीर्वादे किसको मिलती है, जो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहने वाली जो आत्माएं हैं उन्हें क्या मिल जाती है, शुभ आशीर्वादे मिल जाती है। तुम्हारे ऊपर बाबा कह रहे हैं, सदा यह याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कौन सी जिम्मेवारी? एक स्व के प्रति जिम्मेवारी, एक है विश्व के प्रति, वो थोड़ी ऊंची है, वो सबको पता है। पहली जिम्मेवारी है स्व के प्रति जिम्मेवारी, वो कौन सी है जिम्मेवारी, दो इसमें डिवाइड करेंगे, एक हमारी, हमारे प्रति कौन सी जिम्मेवारी है, और हमारी विश्व के प्रति क्या जिम्मेवारी। विश्व के प्रति जो जिम्मेवारी है उसकी लिस्ट हमारी बुद्धि में है, अगर किसी को लिखने को कहो तो 100 तो आराम से लिख सकते हैं, क्या क्या हमारी जिम्मेवारी है, हमारे कर्तव्य, हमारे फर्ज, हमारी ड्यूटीज, उसकी चर्चा बाद में। सबसे पहली चर्चा है स्व के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, स्वयं को योग्य बनाना, योगी बनाना, एक और योग्य और योगी और निर्विघ्न बनाना। स्वयं को निर्विघ्न कैसे बनाएंगे, कल की मुरली टीचर से मुलाकात। स्वयं को सेवाधारी समझेंगे तो क्या होगा, त्याग और तपस्या का वायुमंडल होगा, निर्विघ्न बनेंगे और भाग्य तुम्हारी दासी बन जाएगा। तो स्वयं को निर्विघ्न बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है, और स्वयं को परिपक्व, स्वयं को मैच्योर्ड बनाना, आध्यात्मिक परिपक्वता स्वयं में लाना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ऐसा कोई ये ना समझे कि ये आध्यात्मिक मार्ग में है और इन छोटी छोटी बातों से विचलित हो रहे हैं। लोगों की आध्यात्मिक व्यक्तियों के प्रति बड़ी आशाएं होती है, खुद स्वयं अध्यात्म का पालन नहीं करते, परंतु जो इस मार्ग का पालन करता है उनको बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं और उनके प्रति अपेक्षाएं भी ज्यादा रखते हैं कि हमारा तो ठीक है पर तुम तो इस मार्ग में हो, तुम्हें तो दुखी नहीं होना चाहिए, हमारा तो ठीक है हम हलचल में आ गए पर तुम तो यहां हो तो तुम्हें हलचल में नहीं आना चाहिए। यह भी मनुष्य के मन की एक वृत्ति है, आप गुस्सा नहीं कर सकते, हम भले करेंगे। हाँ, आपने ये शिक्षा ली है, आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, हमें तो इसके बारे में पता नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी ना, आप डॉक्टर हो, आपको सब पता रहना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बताया। तो स्वयं को परिपक्व बनाना, स्वयं को शक्तिशाली बनाना, मैच्योर्ड बनाना, स्ट्रांग बनाना, रोबस्ट पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल जायंट बन जाए हम, तो ये हमारी स्वयं के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आधार मूर्त बनना, और दूसरों को आधार दे सके इतना शक्तिशाली बनना, खुद ही अगर हम शक्तिशाली नहीं है। कल की मुरली में था जो कमजोर आत्माएं हैं उनकी समस्याओं का हल करना, उनके व्यर्थ और कमजोर संकल्प को समाप्त करना, उनको स्वस्वरूप का, निज स्वरूप का, अपने स्वरूप का, आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराना। उसके लिए हम स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित हो और हमने स्वयं आत्मिक अनुभव कर लिया हो तो ही वो अनुभव दूसरों को दान और पुण्य दिया जा सकता है, उसके सिवा नहीं। और स्वयं को हल्का रखना, ये तो मुरली में ही आ गया है कि हल्के जिम्मेवारियां हल्की हो जाती है, क्यों, क्योंकि आत्माओं की आशीर्वाद मिल जाती है और यही आगे बढ़ने का, स्थिति को आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। और स्वयं को आदर्श बनाना, और स्वयं को आदर्श सैंपल आइडियल बनाना, और हम्म स्वयं को लायक बनाना वो बोल दिया, और लॉ मेकर। प्रश्न क्या है, स्वयं के प्रति जिम्मेवारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे मुख्य एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो स्वयं के प्रति है वो स्वयं को खुश रखना। ये एक बहुत ही मूलभूत बुनियादी और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां संसार में सभी दुखी हो रहे हैं वहां स्वयं को खुश रखना ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच में बिना किसी रुकावट के समस्या को बिना किसी रुकावट के पार करने वाले उड़ती कला द्वारा उड़ता पंछी बनना, यही करें। तो स्वयं को खुश रखना ये एक बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जागृत रखना और खुश भी रखना। यूनान में एक सम्राट ने अचानक किसी के कहने पर या कहीं से कोई यहां वहां की बातें सुनकर अपनी वजीर को मृत्यु दंड की सजा दी। दोपहर में उसके घर में संदेश भेजा कि शाम को 6 बजे तुम्हें मृत्यु की सजा होने वाली है। उस दिन उसका जन्मदिन था, घर में उत्सव होने वाला था, भोज पर लोग आए हुए थे, दूर से किसी संगीतज्ञ को बुलाया हुआ था। संगीतज्ञ ने वीणा खोल ली थी, अभी वीणा बजने ही वाली थी और भोजन अभी शुरू होने वाला था, और उस बीच में उस जलसे के समय ये समाचार आया कि शाम को 6 बजे मृत्यु की सजा होने वाली है। संगीतज्ञ ने वीणा बाजू में रख दी, मित्र बहुत उदास हो गए, पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, इसमें रोने की क्या बात है, यह तो उत्सव का समय है, उत्सव को मंद नहीं, उत्सव को मध्यम नहीं, उत्सव को और तीव्र करो, क्योंकि कितनी अच्छी बात है और राजा को भी धन्यवाद, उसने मुझे अवसर दिया, समय दिया 6 बजे तक का, तब तक मैं अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों को अपने मित्रों के बीच में और संगीत में और उत्सव में और भोज के साथ मिलन मनाते हुए सभी के बीच में सबसे मैं विदा लूंगा, तो कितनी अच्छी ये बात है। तो इसमें उदास होने का तो कोई काम ही नहीं है। फिर से उसने कहा, भोज फिर से तैयार हो जाए, भोज को तैयार करो, वीणा फिर से नृत्य और संगीत चालू करो और वही उत्सव का वातावरण हो। राजा अचानक ये देखने के लिए कि इसकी क्या हालत है, 6 बजने से थोड़े पहले उसके घर पहुंचता है तो देखता है उत्सव का वातावरण। वो उसका कहता है कि क्या तुम्हारे पास ये खबर नहीं पहुंची, राजभवन से खबर पहुंची या नहीं पहुंची। वो कहता है कि हाँ जरूर पहुंची है और इसलिए तो ये उत्सव और तीव्र कर दिया गया है। कितनी खुशी की बात है कि मैं इस संसार से अंतिम विदा लेने जा रहा हूँ, मेरे मित्र मेरे पास है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे साथ है और यहाँ पर ये ऐसा संगीत का उत्सव हो रहा है, खापी की भी जा रहे हैं। तो जीवन में खुश रहना या दुखी होना ये हमारी जिम्मेवारी है। हम दुखी है या हम सुखी है इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। हमारे जीवन में जितना भी दुख है हम ये नहीं कह सकते कि इसके अस्तित्व की वजह से हम दुखी है, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। मैं स्वयं ही इस बात का जिम्मेवार हूँ। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हर विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को खुश रखना, उसके लिए हमारे पास वैसा श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए तो ये कार्य हो सकता है। केवल उस ज्ञान के आधार से और योग के आधार से हम स्वयं को खुश रख सकते हैं, उन अनुभवों के आधार से हम खुश रख सकते हैं। ऐसे कुछ श्रेष्ठ संकल्प हमारे पास हो जिससे हम खुश रख सकते हैं स्वयं को। संकल्प अर्थात शब्द होते हैं, उसमें शब्द में भी शक्ति होती है। शब्द जो है वर्ड्स जनरेट इमोशंस, नॉट ओनली दैट वर्ड्स जनरेट एक्शंस, नॉट ओनली दैट वर्ड्स जनरेट एक्सपीरियंस। सम्मोहन में क्या किया जाता है, शब्द ही होते हैं, शब्दों के आधार से ही उस तरह के अनुभव क्रिएट किए जाते हैं, उस तरह के एक्शंस क्रिएट किए जाती है, उस तरह के इमोशंस क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ शब्दों का संचय, समूह, संकल्प, स्टॉक हमारे पास हो, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम निकाले और जैसे वो शब्द है उन्हीं अर्थ में स्थित हो जाए। उस दिन सुना था ना, पुरुषार्थी शब्द का गलत उपयोग नहीं करो, उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थ अर्थात प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति का मालिक वह है पुरुष। एक एक शब्द के अर्थ में स्थित हो जाना परिस्थितियों के समय, तो ये एक जिम्मेवारी है स्वयं को खुश रखना। और हमारी क्या जिम्मेवारी है? कोई भी खजाना व्यर्थ ना जाए, जो कह रहे हैं ना यहाँ पर, जो पावर है उसका मिसयूज नहीं करना है, कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना। हमारी जो शक्तियां है, सबसे बड़ी शक्तियां जो मिसयूज होती है वो है समय। हमारा समय हमारा है, किसी और के पास ये अधिकार नहीं है कि हमसे वो छीन ले, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, परंतु हमारा समय वेस्ट ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बहुत सारे गेस्ट आ जाए और उन सब गेस्ट को हमें घुमाना है, हमने तो हजार बार घूम लिए पर उनको घुमाना है, तो वो केवल घुमाने का कर्तव्य ना रह जाए, उसमें हमारा ज्ञान योग भी सूक्ष्म रूप से अंदर ही अंदर चलता रहे। तो हमारा समय केवल, हम ये नहीं कह सकते हमें टाइम ही नहीं मिला मुरली पढ़ने के लिए या मुरली पर चिंतन करने के लिए, क्योंकि इतने गेस्ट आ गए थे, क्योंकि ये आ गए थे, क्योंकि वो आ गए थे। इनका आना कभी रुकने वाला है या बढ़ने वाला है या ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है? क्या होने वाला है? ये तो बढ़ने ही वाला है। तो क्या हम फिर ये हमारा ज्ञान योग छोड़ते जाए ये कहकर कि वो आ गए थे? वो तो आते ही रहेंगे। इसके लिए सारी सब कुछ करते हुए भी हमारा समय वेस्ट ना हो, मन के संकल्प वेस्ट ना हो। कल बाबा ने कहा था, संकल्पों के खजानों के महत्व को जानो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप थी फिर उसको, उसका स्टॉक जमा करो। जानना, जमा करना, उसके लिए उसमें में जो व्यर्थ है उसको हटाना, व्यर्थ की अस्वच्छता को निकाल दो, स्वच्छ बन जाना, तो ही उसमें शक्ति आएगी। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्वयं के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, स्वयं को संतुष्ट करना, एक बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है। वही बनकर जीवन में रहना जो मैं हूं, मुखौटे पहन के नहीं रहना, जो मैं हूं। विदेश में एक हसीद फकीर हुआ है, हसीद एक यहूदियों में भी एक प्रजा, एक जाति है, यहूदी जो सांप्रदाय है उसमें भी एक सब ब्रांच है जिसको हसीद डायनेस्टी कहा जाता है। उनमें एक हसीद फकीर हुआ है, उसका नाम था जुजिया। वो जब मरने के करीब था तो रोने लगा। अभी ऐसा ज्ञानी व्यक्ति रो रहा है मृत्यु को देखकर, मित्रों ने पूछा क्या भयभीत हो गए, रो क्यों रहे हो जुजिया? उसका नाम था जुजिया, ZUSIA, जुजिया। वो कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान के सामने जाऊंगा तो वो मुझे कुछ प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। वो बोलता है कौन से प्रश्न वो ऐसे पूछेंगे जिसके लिए तुम रो रहे हो? वो कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि भगवान मुझे अगर ये पूछे कि तुम मूसा की तरह क्यों नहीं थे, मूसा है ना, मोसेस, तो मैं ये उत्तर दे दूंगा क्योंकि मैं मूसा की तरह नहीं था, क्योंकि भगवान दोष तुम्हारा है, क्योंकि तुमने मूसा जैसे कोई भी गुण मुझ में नहीं दिए। मूसा एक मोसेस वाज वन ऑफ द प्रोफेट्स। मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ भगवान को, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूँ या इसके लिए, क्योंकि भगवान अगर मुझसे ये पूछे कि वाई वेयर यू नॉट लाइक अ मोसेस, तो मैं ये कह दूंगा कि क्योंकि तुमने मुझे उसके जैसे गुण नहीं दिए, इसके लिए मैं नहीं रो रहा हूँ। फिर वो कहता है फिर क्यों रो रहे हैं? वो कहता है मैं इसके लिए भी नहीं रो रहा हूँ कि भगवान अगर मुझसे कहे कि वाई वेर यू नॉट लाइक रबिया, नोहा करके एक दूसरा प्रोफेट हुआ है, नोह, तुम उसके तरह क्यों नहीं थे? तो मैं आसानी से उत्तर दे दूंगा, मैं उसके तरह इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने उसके जैसे कोई गुण मुझ में नहीं दिए, मैं इसके लिए भी नहीं रो रहा हूं। तो मित्र पूछते, तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि भगवान मुझसे पूछेगा कि जुजिया, तुम जुजिया की तरह बनकर क्यों नहीं रहे जीवन भर? वो तो तुम्हारे हाथ में था, सारी क्वालिटीज तुम में थे, हमेशा तुमने दूसरों को नकल करने की प्रयत्न किया जीवन में। व्हाई वेयर यू नॉट लाइक यू? तुम जो हो, जो तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा अस्तित्व है, उन तुम अपने ही तरह क्यों नहीं जिए? तुम दूसरों को सारी उम्र भर नकल करते रहे, वो तुम वो दिखाते रहे जो तुम थे ही नहीं। ये भगवान जब मुझसे पूछेगा तो मैं तब क्या उत्तर दूंगा? पहले तो उत्तर दिया क्योंकि तुमने मुझ में उन जैसे क्वालिटीज नहीं भरी, पर इसकी जैसी क्वालिटीज तो मुझ में थी, मेरा स्वभाव अपना था, पर वो होते हुए भी मैंने क्या किया जीवन भर? इसके उसके मुखौटे पहने, वो नहीं दिखाया जो मैं था, कुछ और ही दिखाते रहा, मास्क मुखौटा पहन के घूमा। तो ये भी हमारी एक जिम्मेवारी है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, वही होकर रहूं, दिखावा नहीं करूं, दिखावटी बनावटी होकर नहीं रहूं। ये भी हमारी एक जिम्मेवारी है और ये तो सबसे मेन जिम्मेवारी है। बी ऑथेंटिक, बी रियलिस्टिक, बी व्हाट यू आर, डू नॉट ट्राई टू मास्करेट दैट विच यू आर नॉट। वो बात यहां दूसरी है, ये बात ही नहीं चल रही है, वो सब्जेक्ट ही दूसरा है। यहाँ बात वो जो है वो है, यहाँ दिखावे की, नकल करने की। अब उसने वो किया तो हम भी वो करें, अब उसने वैसा बोला तो हम भी वो बोले, अब उसने वो उदाहरण दिया तो हम भी चुराना, ओरिजिनलिटी से हट जाना, ये बातें चल रही है। वो सब्जेक्ट ही दूसरा है, ये सब्जेक्ट एकदम दूसरा है। तो वही बनकर रहना जो कि मैं हूं। ऐसा नहीं हम मित्रों के साथ चले गए, अब उनको खुश करने के लिए उनके साथ पार्टी में चले गए, मूवी में चले गए, क्योंकि हम दिखा रहे आ रहे हम वही है जो पहले थे, पर हम तो अब बदल चुके हैं, हमारा व्यक्तित्व ही ये हो गया है। अपना जो ओरिजिनल आध्यात्मिक व्यक्तित्व है उससे नीचे ना गिर जाना। ओरिजिनलिटी, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी में स्थित रहना, जो हम जैसे है, जो बाबा हमको जिस रूप में देख रहा है उसी रूप में रहना। वो नहीं कि जो हम द्वापर से हो चुके, वो हमारा अस्तित्व नहीं है, वो हमारा मुखौटा है देहवान वाला। और कौन सी जिम्मेवारी है? स्वयं को सेफ रखना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्व का कल्याण बाद में करना, वो सेकंड स्टेप है, पहले स्वयं को सुरक्षित, स्वयं की हिफाजत, स्वयं की सेफ्टी, स्वयं को महफूज रखना, ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस से महफूज रखना? माया के आक्रमण से, माया के वार से, परमत से, मनमत से, ये सारे जो चीजें हैं संसार की हवाएं, विकारों से, व्यर्थ से, निगेटिव से, इस संगठन में रहते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थ की द्वीप कि दीप हम में हमेशा जलती रहे, वो बुझ ना जाए, इसको सेफ रखना, स्वयं को सेफ रखना, पुरुषार्थ की ज्योति को सेफ रखना, मधुबन के प्रति हमारी जो भावनाएं, ऐसा नहीं कि यहां रहते रहते मधुबन के प्रति हमारी भावनाएं कम हो जाए, मधुबन के प्रति भावनाएं, मुरली के प्रति भावनाएं, यहां पर जो बहने हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है, ऐसी जो अर्पिताएं, निवेदिताएं और समर्पिताएं आत्माएं, उनके प्रति श्रेष्ठ भाव रखना, क्योंकि वो साधारण आत्माएं नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने यौवन को इस यज्ञ की वेदी पर समर्पित कर दिया। वो संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, परमात्मा द्वारा चुनी हुई, गॉड चोजन सोल्स, उनके प्रति हमारी भावनाएं सदा श्रेष्ठ हो। कल की मुरली में नंबर वन तकदीरवान आत्माओं की जिम्मेवारी में एक पॉइंट था, हरेक आत्मा को उसके अपने अनादि संबंध से अपना समझना, भाई भाई समझना, सच्ची प्रीत रखना, शुभ भावना, शुभ कामना रखना कि सभी सुखी और सभी शांत हो जाए, जो जे वांछिल तोतेला हो, ये श्रेष्ठ भाव रखना। ये जो भावना है वो सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, तो ये हमारी एक जिम्मेवारी है। तो ये सारी जिम्मेवारियां क्या है? हमारी जिम्मेवारियां है। दूसरे प्रकार की जिम्मेवारी है वो हमारी विश्व के प्रति, वो सभी जानते हैं, उसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती रहती है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? रूहानी युद्ध ग्रुप शांतिकारी कल्याणकारी ग्रुप है, तो मैं शांतिकारी आत्मा हूँ। इसी समान में नाम क्या कहा, पूर्वा बहन अभी हम सबको योग कराएगी। योग में एक दो बातें हैं। योग में सबसे पहले पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां और दृष्टि, इसको सबसे पहले स्थिर करो। योग में पैर हिलाते रहना, इधर से उधर, उधर से उधर, यहां से वहां, वहां से वहां, ये योग की मर्यादाओं के विरुद्ध है। सबसे पहले तो ये देह स्थिर हो जाए। उंगलियां, पैरों की उंगलियां, पैर और आंखें, इन तीन चीजों को स्थिर करो। यहां तक कि जबान को निश्चेष्ट कर दो, ऐसे नहीं कि जबान भी हिलती रही अंदर ही अंदर, एक जगह स्थिर निश्चेष्ट, चेष्टा के
चेष्टा नहीं करनी कोई,
चेष्टा रहित, चेष्टा विहीन निश्चेष्ट। तो ये एक बात। दूसरा, जब यहाँ बैठ के क्लास जो भी कराते हैं वहां पर भी पैर स्थिर हो, ये एक बहुत बड़ा नियम है। हमने देखा है बहुत सारी आत्माएं कंटिन्यूअस पैर को हिलाना, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये पैर की जो उंगलियां है इनको, इनका हिलना अर्थात मन की अस्थिरता। संतली पर जो भी बैठते हैं, चाहे सेंटर की बहने बैठती है, वहां पर भी हमने देखा पैर ऐसे 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 चालू रहते, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, वो एंग्जाइटी प्रदर्शित करती है।
के
हाँ वो ठीक है फिर, परंतु दूसरों को वो ना दिखे। तो मन को स्थिर करना, उसके पहले शरीर को स्थिर कर लेना।